स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 2 अप्रैल और दिन शनिवार। छत्तीसगढ़ पुलिस का दावा, वायुसेना ने किया फायरिंग अभ्यास।
माओवादियों को खत्म करने के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार सैन्य अभियान के नाम पर गुपचुप तरीके से हवाई हमलों की तैयारी कर रही है।
असम में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। अमेरिका से आज सऊदी अरब जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जैश प्रमुख मसूद अजहर के साथ जम्मू जेल में रहे एक शख्स से मुलाकात।
अजहर साहब के हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, ना उन्होंने किसी को मारा है। उनका काम एक ही था, वाज पढ़ना। अगर अजहर साहब आपको इस टाइम यहाँ पर बैठे मिल जाएं और आपसे वो चार बातें करें तो आप ये कैमरा छोड़कर बोलेंगे मैं भी जिहाद करने जा रहा हूँ।
अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अजय शर्मा से। छत्तीसगढ़ में भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने राज्य के माओवाद प्रभावित इलाके बस्तर के सुकमा जिले में फायरिंग का अभ्यास किया है। कई बार माओवादी इन हेलीकॉप्टरों को निशाना बना चुके हैं। पुलिस के मुताबिक सेना हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल केवल बचाव में हमले के लिए करेगी, पर मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे आदिवासियों के मारे जाने की आशंका है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुताबिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दावेदार रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को विदेश नीति या दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ओबामा ने ये बात जापान और दक्षिण कोरिया से अमरीकी फौजें हटाने की ट्रंप की सलाह पर कही। ट्रंप ने कहा था कि जापान और दक्षिण कोरिया को अपने परमाणु हथियार तैनात करने चाहिए। वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ओबामा ने कहा कि दुनिया में प्लूटोनियम का भंडार बढ़ रहा है और इन्हें सुरक्षित करना होगा।
Everybody has been participating, and by working together, our nations have made it harder for terrorists to get their hands on nuclear material.
सभी देश मिलकर काम कर रहे हैं और इन्होंने चरमपंथियों के लिए परमाणु सामग्री हासिल करना तकरीबन नामुमकिन कर दिया है। हमने काफी हद तक खतरा घटा दिया है, मगर परमाणु आतंकवाद का खतरा बना हुआ है और लगातार बढ़ रहा है। सौभाग्य से हमारी एकजुट कोशिशों के चलते अभी तक किसी चरमपंथी संगठन के हाथों में कोई परमाणु हथियार नहीं है और न वो कोई ऐसा बम बना सके हैं। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने सोमालिया में चरमपंथी संगठन अल शबाब के 3 सदस्यों को ले जा रहे एक वाहन पर ड्रोन से हमला किया है। पेंटागन प्रवक्ता के मुताबिक उनका निशाना हसन अली धूरे नाम का एक चरमपंथी था, जिस पर हाल में मोगादिशु एयरपोर्ट पर हमले कराने का आरोप है। हसन अली की ओर से होटल पर एक हमले में एक अमरीकी अधिकारी की भी मृत्यु हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने कहा है कि वो देश की सर्वोच्च अदालत का वो आदेश मानेंगे जिसमें उनसे अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल हुए सार्वजनिक पैसे को वापस करने को कहा गया है। गुरुवार को अदालत ने कहा था कि जुमा ने भ्रष्टाचार विरोधी इकाई की जांच की अनदेखी की है और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि पिछले साल देश में 1100 से ज़्यादा महिलाओं को की उनके रिश्तेदारों ने इज्जत के नाम पर हत्या कर दी है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि इस्लाम में इज्जत के नाम पर कत्ल के लिए कोई जगह नहीं है। भारत में एक मशहूर टीवी सीरियल बालिका वधु में अहम किरदार निभाने वाली कलाकार प्रत्युषा बनर्जी की अचानक मृत्यु हो गई है। पुलिस ने उनका शव उनके गोरेगांव स्थित फ्लैट से बरामद किया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अप्रैल की 2 तारीख और दिन शनिवार। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में वायुसेना ने बस्तर के सुकमा जिले में हेलीकॉप्टर से फायरिंग का अभ्यास किया है और खुद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कल यानी शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। हालांकि इससे पहले भी अक्टूबर 2015 में वायुसेना ने इसी तरह का अभियान किया था। हालांकि इससे पहले भी अक्टूबर 2015 में वायुसेना ने इसी तरह का अभ्यास किया था और फिर इससे पहले 2013 में भी वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने राज्य पुलिस के साथ फायरिंग का अभ्यास किया था। हालांकि तब कहा गया था कि केवल आत्मरक्षा में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बार बात कुछ अलग दिख रही है। अभ्यास की खबर आते ही मानवाधिकार संगठनों ने सैन्य बलों के जरिए हमले किए जाने की आशंका जताई है। इन संगठनों का कहना है कि अगर अपने ही नागरिकों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल किया जाता है तो यह लाखों आदिवासियों को युद्ध में झोंकने जैसा होगा। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बस्तर में पुलिस द्वारा शुरू किए गए मिशन 2016 अभियान में बड़ी संख्या में मुठभेड़ें हुई हैं, समर्पण हुए हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं, और इन मुठभेड़ों पर, समर्पण पर और गिरफ्तारियों पर सवाल भी खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल उठाने वाले, तथ्यों को सामने रखने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों को लगातार पुलिस निशाना बनाती रही है। इन सबके बीच सुकमा जिले में वायुसेना द्वारा फायरिंग अभ्यास की खबरें ऐसे समय में आई हैं जब पिछले महीने ही बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के भीतर हवाई पट्टी बनाने को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दी है। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि 1 अप्रैल को वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों द्वारा सुकमा जिले के चिन्हांकित क्षेत्र में उड़ान भरी गई और 1 MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा हवाई फायरिंग का अभ्यास किया गया। यह पूरी कार्रवाई वायुसेना के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किए गए कमांडो दस्ता गरुड़ द्वारा की गई। इस अभ्यास में वायुसेना एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ऐसा नहीं है कि वायुसेना द्वारा यह अभ्यास पहली बार किए गए हों। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी बीजापुर जिले में वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों से फायरिंग का अभ्यास किया था, लेकिन तब पुलिस ने दावा किया था कि यह अभ्यास केवल आत्मरक्षार्थ किया गया था और पुलिस अपने ही लोगों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पिछले साल वायुसेना द्वारा किए गए फायरिंग अभ्यास पर बस्तर के IG पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने अपनी लंबी सफाई दी थी।
फोर्स यूज करने का एकमात्र प्रावधान है राइट टू सेल्फ डिफेंस के लिए। अब एरियल अटैक के लिए फिर तो कानून ही बदलना पड़ेगा, वो तो सिर्फ वॉर्स में यूज हो सकते हैं। अभी हम केवल व्हेन फायर्ड अपॉन हम रिटेलिएट कर सकते हैं, हम अपने से फायर भी नहीं करना चाहिए। जो CRPC के धारा के तहत या IPC धारा के साथ हम अभी ऑपरेट करते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ सेल्फ डिफेंस का ही प्रावधान है, और एरियल बॉम्बिंग के लिए फिर कानून ये सब बदलना पड़ेगा।
लेकिन इस बार दृश्य बदला हुआ है और पुलिस मुख्यालय ने बजाबता प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इस अभ्यास की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। मानवाधिकार संगठन PUCL की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह का कहना है कि बस्तर में वायुसेना की उपस्थिति चिंताजनक संकेत दे रही है।
हम शुरू से इस बात का विरोध करते हैं कि भारत की सेना अपने ही लोगों के खिलाफ एक युद्ध थोप रही है और ऐसे लोगों के ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है जो इनोसेंट है, शस्त्र विहीन है और इस युद्ध में शामिल भी नहीं है। आदिवासियों का जीवन खतरे में है और हमें पूरे देश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, मानवाधिकार संगठनों को और पूरे दुनिया के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी इस पर ध्यान देना होगा कि एक बड़ा समुदाय जो इस संकट से घिरा है उसकी जान को खतरा है।
डॉक्टर लाखन सिंह का कहना है कि वायुसेना अगर माओवादियों पर हमला करती है तो इस बात की पूरी आशंका रहेगी कि माओवादियों के बजाय निर्दोष आदिवासी मारे जाएं।
हम लोग सूझ की बात कहते आए हैं कि अभी तक कोई ऐसी तकनीकी डेवलप नहीं हुई है जिससे कि आप सिलेक्टिव फायरिंग कर पाएँ उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी रहते हैं, जहां नक्सल के लोग भी रहते हैं, नक्सल भी रहते हैं। वहाँ ये संभव नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर से किसी को पहचान पाएँ कि कौन नक्सल है और कौन आम ग्रामीण है।
राज्य में सामाजिक संगठनों के सामूहिक मंच छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला का साफ कहना है कि सरकार माओवाद का राजनीतिक हल निकालने के बजाय आदिवासियों को युद्ध के रास्ते पर धकेल रही है।
माओवादियों को खत्म करने के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार सैन्य अभियान के नाम पर गुपचुप तरीके से हवाई हमलों की तैयारी कर रही है। दुनिया के उदाहरण है कि जहां पर भी हवाई हमले हुए हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जनहानि हुई है, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जहां पर अति आदिम जनजाति आदिवासी हैं, ऐसी जगह पर हवाई हमलों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता।
बस्तर में पुलिस और माओवादियों की लड़ाई की जद में फंसे आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं, यह बात तो बहुत साफ है, लेकिन वायुसेना की फायरिंग की अभ्यास का विस्तार किस हद तक होगा इसकी तस्वीर अभी धुंधली है। यह धुंधलका चाहे कम हो या गहराए, लगता नहीं है कि बस्तर के आम लोगों की मुश्किलें कम होंगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
तो छत्तीसगढ़ पुलिस के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया और दिल्ली स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने आलोक पुतुल की रिपोर्ट में भी सुना था कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में कई पत्रकार भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो इसी पर होगा आज हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम इंडिया बोल।
BBC इंडिया बोल।
बस्तर में पत्रकार कितने आजाद? एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक खौफ में हैं बस्तर के पत्रकार। पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है या डरा धमका कर इलाका छोड़ने पर मजबूर किया गया है। अगर पत्रकारों को काम करने की आजादी नहीं होगी तो माओवादियों और सरकार के बीच छिड़ी लड़ाई की सही तस्वीर कौन सामने लाएगा? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर बातचीत होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 2 अप्रैल को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1800 11 7000 या 1800 102 7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो अब मध्य भारत से चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सोमवार यानी 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। इसी से जुड़ी अब एक खास खबर। असम के उत्तरी काचार की पहाड़ियों में दीमा विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष के दौरान राज्य सरकार ने लगभग 800 से ज्यादा SPOs यानी विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की थी, मगर वर्ष 2015 में इन सभी विशेष पुलिस अधिकारियों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी परमानेंट नौकरी नहीं थी, जबकि इन्हीं के ऑपरेशन के कारण आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को असम पुलिस की नौकरी दे दी गई। अब चुनाव के समय यही SPO सड़कों पर उतरकर मतदाताओं के बीच अपनी फरियाद सुना रहे हैं। BBC संवाददाता सलमान रावी ने ऊपरी असम में ऐसे ही SPO के एक समूह से बातचीत की।
ये बिल्कुल एक अलग सी एक रैली निकल रही है असम की सड़कों पर, और झंडों से देखने से लगता है कि SPO लिखा हुआ है, विशेष पुलिस अधिकारी, यानी कि यही है ना SPO, स्पेशल पुलिस ऑफिसर।
हम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर है
जी।
हम लोग को 2008 में तरुण गोगोई नेतृत्व में असम सरकार ने,
आपका ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है?
असम स्पेशल पुलिस ऑफिसर वेलफेयर सोसाइटी।
ये आप लोग के पूरे असम का है या सिर्फ इस इलाके का?
असम का है सर।
पूरा आपका नाम क्या हुआ?
मृत्युंजय बोरा, मैं असम स्पेशल वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ।
अच्छा, और आपका नाम?
मेरा नाम दिलीप चैकिया है, मैं प्रेसिडेंट है ये सोसाइटी का।
ये इश्यूज क्या है, क्यों आप लोग सड़क पे उतर रहे हैं, क्यों मुर्दाबाद कर रहे हैं कांग्रेस का, क्यों बीजेपी का जिंदाबाद कर रहे
हैं? सरकार ने हम लोग को बोला था 2008 में जो जॉब एक्सट्रीमिस्ट का लोग को अभियान के लिए हम लोग नियुक्त किया था, इस टाइम ने बोला है
कौन से एक्सट्रीमिस्ट, उल्फा या
DAG ज्वेल?
उसी टाइम 2008 में
जी
दिमासा डिस्ट्रिक्ट में
जी
DSD ज्वेल पार्टी और कोकराझार सिरांग बास्का इसी इलाका में NDA का सिचुएशन बहुत खराब हुआ था उन लोग के लिए।
हाँ।
इसीलिए उसी टाइम पर हम लोग को उन लोग को ऑपरेशन के लिए हम लोग को उस डिस्ट्रिक्ट में असम में 11 डिस्ट्रिक्ट में 1000 SPO को अपॉइंट किया था।
तो आप लोग को ट्रेनिंग भी, हथियार
ट्रेनिंग दिया हम लोग को सब कुछ। हम लोग को पहले हम लोग होमगार्ड में था।
हाँ।
होमगार्ड से हम लोग सिलेक्ट करके स्पेशल आर्म्स ट्रेनिंग देके हम लोग को उधर भेजा था।
अच्छा।
जब 2010 में DSD
तो क्या ये लड़ाई हो रही थी?
लड़ाई भी हुआ था, हम लोग का आदमी भी मारा गया उस टाइम में। अभी मारा गया आदमी लोग का घर का कोई नहीं मिला, अभी तो हम लोग को भी नहीं मिला। जब सरेंडर किया और हम लोग का जब ऑपरेशन हम लोग किया उस टाइम में 2010 में NC हिल में पूरा उग्रवादी सरेंडर किया।
सामने कौन से उग्रवादी थे?
वो DSD ज्वेल है, पूरा सरेंडर कर लिया। उसके बाद उन लोग 1000 लोग को सरेंडर वाला उग्रवादी लोग को असम पुलिस में नौकरी दे दिया, लेकिन हम लोग को सरकार ने सताय कर दिया नौकरी।
जिन लोगों ने जिनके खिलाफ में आपको उतारा गया उन लोगों को सरेंडर करवा के उनको नौकरी दी गई?
हां, उनको नौकरी दे दिया। हम लोग को सताय कर दिया नौकरी से
2015 में। हम लोग का सताय किया उठे से।
आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम दिकू सैकिया।
कितनी मिलती थी आप लोगों को सैलरी उस टाइम?
हम लोग को सबसे पहले 8000
8200 रुपया मिलता है। अभी तो नहीं, नौकरी भी नहीं है, सरकार ने लिख के दिया है
जी डी उस टाइम में होम कमिश्नर जी डी त्रिपाठी असम में है, उन लोग हम लोग को लिख के दिया एस पी ओ लोग को सब लोग को परमानेंट नौकरी दे देगा लिख के दिया। लेकिन असम में जब भानु आ गया, एम जी के भानु आ गया, तब त्रिपाठी को असम से हटा दिया और हम एस पी ओ लोग को सरकारी से सटा कर दिया सब लोग को।
ये बताइए कि जो लोग मारे गए थे आपके बीच के एस पी ओ, कितने मारे गए थे?
हम लोग का तो उग्रवादी का गोली में 3 आदमी मर गया और बाद में बीमार वीमार में तो 150 आदमी मर गया।
अच्छा, तो इतने लोगों को कुछ कम्पनसेशन मिला, मुआवजा मिला?
कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं मिला। सरकार ने कुछ भी नहीं दिया अभी, हम लोग का कोई बात भी नहीं सुनता है उन लोग। हम लोग उनका पास में जाने से भगा दिया, तुम लोग का टेम्पररी नौकरी, तुम लोग जाओ अभी। लेकिन हम लोग पूछता है उन लोग को, उन लोग जो उग्रवादी लोग है उन लोग को नौकरी दे दिया। हम लोग के जो ऑपरेशन से उन लोग सरेंडर किया, उन लोग को नौकरी दे दिया 1000 लोग को, लेकिन हम लोग को क्या सटा कर दिया? और बोलता है तुम लोग का नौकरी टेम्पररी नौकरी है, तुम लोग अभी घर में जाओ।
तो ये बताइए कि अब आप जो है सड़कों पर सिर्फ यहीं पर है या पूरे आसाम में?
पूरा आसाम में है।
अच्छा,
अभी ये जोरहाट का है।
तो ये आप क्या मांग कर रहे हैं लोगों से, ये माइक पर क्या बोल रहे?
तो माइक में बोलता है अभी जो असम सरकार कांग्रेस सरकार ने हम लोग को जो प्रताड़ना किया है हम लोग को, तो उन लोग को हम लोग बहुत धोखा दिया, इसीलिए ये सरकार असम में नहीं रहना चाहिए, ये सरकार नहीं चलना चाहिए। ये सरकार रहने से असम गवर्नमेंट का जितना नकरेला है उन लोग को तनख्वाह नहीं मिलेगा।
लेकिन आप लोग तो 850 लोग हैं, क्या लोगों के दिमाग पे असर पड़ेगा आपकी बात का जब आप हाँ, कर रहे हैं?
पूरा आसाम का आदमी लोग बोलता है, आसाम आदमी लोग हम लोग बोलता है ये आप लोग का फेवर में हम लोग है, आप लोग लड़ाई करो सरकार का विरोध में।
तो सुना आपने कि ये जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं एसपीओ, यहाँ पर जिन्हें उतारा गया था इंसर्जेंसी के खिलाफ में, अब वो बेरोजगार घूम रहे हैं और ये सड़कों पर घूम घूम के यही डिमांड कर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है, चूंकि उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए उसे लोग वोट ना दें। सलमान रावी, बीबीसी, जोरहाट, असम।
अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी आज सबकी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब में होंगे। वो वहां किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निमंत्रण पर गए हैं। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद किसी भारतीय नेता की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा हो रही है। मोदी यहां किंग सलमान के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सामूहिक हितों वाले कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सऊदी अरब 2014 से 15 के बीच द्विपक्षीय कारोबार में 4th सबसे बड़ा सहयोगी बन गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी 4 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद आज भारत लौट रहे हैं। जेटली ने ऑस्ट्रेलिया में मेक इन इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। यहां वो कुलती, बांकुरा और दुर्गापुर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। आगामी 13 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कुछ रैलियों को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 4 अप्रैल को होना है। भारत के प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह आज लंदन के उपनगर हैरो में अपनी 5वीं प्रो बाउट में हिस्सा लेंगे। इससे पहले 13 मार्च को लगातार 4थी जीत दर्ज करते हुए उन्होंने हंगरी के अलेक्जेंडर हॉरवाथ को हराया था। प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सीमी के 3 कार्यकर्ताओं की रिमांड आज खत्म हो रही है। भोपाल की एक अदालत ने 19 मार्च को उन्हें मध्य प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड की हिरासत में दिया था। मध्य प्रदेश ATS ने उन्हें 2013 के खंडवा जेल ब्रेक केस में अदालत में पेश किया था। इन कार्यकर्ताओं पर एक पुलिसकर्मी पर हमले का मामला भी चल रहा है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में न्यूक्लियर समिट में शामिल होने के बाद 2 दिनों की यात्रा पर आज सऊदी अरब जा रहे हैं। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सऊदी अरब गए थे। उसके 6 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां जा रहा है। इस दौरान मोदी सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मोदी की इस यात्रा की क्या अहमियत है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा से।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा समझी जा रही है, उसकी कई वजह हैं। पहली बात तो ये है कि सऊदी अरबिया हमारे तेल का एक सबसे बड़ा सप्लायर है। दूसरी बात ये है कि लगभग 28 से 30 लाख के करीब लोग वहाँ काम करते हैं हिंदुस्तानी, जो काफी बड़ी मात्रा में पैसा भेजते हैं भारत। फिर हमारा ट्रेड उनसे लगातार बढ़ रहा है। और तीसरी चीज ये है कि हम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इस वक्त है, ये चाहते हैं कि सऊदी इन्वेस्टमेंट आए। सऊदी अरबिया में तेल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं, और वो अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, आमदनी को बढ़ाने के लिए भारत, चाइना, जापान, जहाँ पे जो इकोनॉमीज बढ़ रही है, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की, इंडिया जिसमें प्रमुख है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, न केवल सऊदी अरेबिया बल्कि कुवैत और उसके दूसरे सहयोगी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश हैं, वहाँ से भी ये इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। फिर दूसरी बात ये कि पिछले दिनों में हमारा उनके साथ एक सामरिक संबंध भी बढ़ा है। डिफेंस में जैसे कि आप जानते हैं 49% FDI गवर्नमेंट ने खोल दी है, तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरेबिया भी इन्वेस्ट करेगा और उसका काफी इन्फ्लुएंस अरब पॉलिटिक्स पे है, तो इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है।
सऊदी अरब के ईरान से संबंध अच्छे नहीं है, ईरान के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। क्या नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब के दौरे को इस तरह देखा जाना चाहिए कि वो ईरान के साथ संबंधों को दांव पर रख रहे हैं, या इससे ईरान के साथ भारत के संबंधों पर किसी तरह का खतरा हो सकता है?
तीन देश हैं बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसराइल, ईरान और सऊदी अरेबिया। तीनों देशों से अच्छे संबंध बनाए रखना अलग अलग रीजंस के साथ। ईरान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो गेटवे है सेंट्रल एशिया का, वहीं से सब कुछ है और चाबहार पोर्ट इसीलिए बन रहा है जो हमारा गेटवे होगा सेंट्रल एशिया जाने के लिए और सेंट्रल एशिया के लोगों को साउथ एशिया से कनेक्ट करेगा। दूसरी तरफ इसराइल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, एंटी टेरर कोऑपरेशन, दहशत के खिलाफ जो कोऑपरेशन है वो बढ़ रहा है। फिर उसके अलावा हमारा वो गेटवे है यूरोप और अमेरिका, खासतौर से अमेरिका के लिए। फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया हमारा बहुत इम्पोर्टेंट देश हो जाता है और सऊदी अरेबिया लीडर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और दूसरे अरब देशों का, एक बड़ा उसका रोल है वहाँ पे। तो तीनों से अलग अलग भारत अच्छी तरह, तीनों से बराबर संबंध, इन तीनों देशों से आने वाले समय में संबंध लगातार बढ़ेंगे। इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध है यानी बायलैटरल रिलेशन सऊदी अरेबिया, इसी तरह ईरान भारत के हैं और भारत इसराइल के हैं, इन तीनों को भारत नहीं छोड़ेगा, तीनों के साथ रखेगा। ये एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट है जो ये सरकार कर रही है, इससे पहले से चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। भारत न तो ईरान को छोड़ेगा और न ही सऊदी अरेबिया, और इसराइल के साथ भी उसके जो संबंध है वो बना के रखेगा।
सऊदी अरब और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंध तो जग जाहिर हैं, तो ऐसे में क्या भारत सऊदी अरब के मार्फत पाकिस्तान पर किसी तरह का दबाव या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब का इस्तेमाल करना चाहेगा?
देखिए, अभी हमारे उनके साथ पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं बन पाए हैं, हमारे उनके साथ जो कुछ भी है इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है। एक बार इकोनॉमिक कोऑपरेशन जब बढ़ जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल, दो अलग अलग सिस्टम्स हैं इन देशों में मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो सिस्टम बिल्कुल अलग है, तो वो संबंध तो अभी हमारे नहीं बन पाए हैं और बहुत से मामलों में हमारे उनसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी रहते हैं, उसको वो समझते हैं।
ये थे कमर आगा, और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चला है। अजय बताएं।
जी, जो प्रमुख कुछ खबरें हैं उनमें एक खबर मेरे सामने खुली है, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है, वो ये है कि अमरीका की यात्रा पर जो नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इशारों में पाकिस्तान पर निशाना साधा और ये कहा कि कुछ सरकारें जो हैं वो परमाणु तस्करों के साथ सहयोग कर रही हैं
जी।
इसके अलावा एक खबर ये है कि महिलाओं को जो है मंदिरों में जो है जाने का हक मिला है, इस तरह का महाराष्ट्र सरकार ने भी वायदा किया है कि किसी ने भी अगर उन्हें रोका तो 6 महीने की जेल हो सकती है उनको। एक खबर जो अमर उजाला के पहले पन्ने पर है कि 25 साल पहले तीर्थयात्रा से लौट रहे कुछ युवकों को पीलीभीत में जो है बस से उतारकर एक फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 47 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया है। ये उसकी जांच,
ये अदालती फैसला है
नहीं, ये सीबीआई की एक विशेष अदालत ने जो है
ये फैसला सुनाया है
जी।
ये अहम खबर है जी।
और एक है खबर दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है कि फर्जी मजिस्ट्रेट बनके जो है 2700 आरोपियों को रिहा करवाने वाला एक शख्स जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है दिल्ली में। ये ठगी की दुनिया में इन्हें सुपर नटवरलाल और इंडियन चार्ल्स शोभराज के नाम से जाना जाता था,
इनका नाम है
जी धनीराम मित्तल। एक और जो दैनिक जनसत्ता के पहले पन्ने पर जो एक छोटा सा कार्टून लगा हुआ है उसमें यह है कि मध्य प्रदेश में खुशहाल मंत्रालय बनेगा, ये शिवराज सिंह की घोषणा पर है कि चलो कोई तो है जो खुशहाली की बात कर रहा है, और पीछे एक व्यक्ति जो है बोर्ड लिए हुए जिस पर लिखा है भारत माता की जय।
बहुत शुक्रिया अजय आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। पाकिस्तान की धरती से संचालित मौलाना मसूद अजहर के चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाने की भारतीय कोशिशों पर एक बार फिर चीन ने पानी फेर दिया है। जैश पर पठानकोट में हालिया चरमपंथी हमले कराने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा 2 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के लिए भी इसी संस्था को जिम्मेदार माना जाता है। मसूद अजहर वही शख्स हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए 1999 में एक भारतीय विमान का अपहरण कर कंधार ले जाया गया था। रिहाई से पहले वो जम्मू के कोट भलवाल जेल में कैद थे। कुछ दिनों पहले श्रीनगर में हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने जेल में मसूद अजहर के साथी रहे एक दूसरे चरमपंथी सैफुल्ला खान से मुलाकात की। इस दौरान मौलाना मसूद अजहर के बारे में क्या कहा सैफुल्ला खान ने, सुनिए इस बातचीत में।
अजहर साहब के हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, ना उन्होंने कोई एक्शन किया है, ना उन्होंने किसी को मारा है। उनका काम एक ही था, वाज पढ़ना।
हाँ, तो वो आइडियोलॉग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडियोलॉग।
जी हाँ, अगर अजहर साहब आपको इस टाइम यहाँ पर बैठे मिल जाएं और आपसे वो चार बातें करें तो आप ये कैमरा छोड़कर बोलेंगे मैं भी जिहाद करने जा रहा हूँ?
मुझसे तो नहीं करा पाएंगे।
देखिए भाई जान, जब मैं जेल गया मुझे ये लगा कि जो कुछ मैंने किया गलती किया, टोटल गलत किया।
अजहर साहब से मिलने के बावजूद?
अजहर साहब से मिलने के बावजूद मैं अजहर साहब से भी नहीं डरता, अगर वो मेरे सामने हो। मैंने उनके मुंह पर भी ये बात कही
है। ये हमारे हिंदी के श्रोता भी सुनेंगे यूपी बिहार इधर उधर, तो अजहर नसरुल्लाह ये सब कहेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो पूरा नाम सबको बताइए।
मौलाना अजहर मसूद साहब से भी मैं नहीं डरता, मैंने उन्हें भी खुदा गवाह है हक की बात बताई है कोट बुलवाड़ जेल के अंदर बैठ कर।
क्या बोला उनको आपने?
मैंने कहा मौलाना क्या यार ये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, इनके लिए काबे में दुआएँ होती हैं, कश्मीरियों के लिए काबे में दुआएँ होती थी और हम कुत्तों की तरह लड़ रहे थे यहाँ आपस में, हिजबुल मुजाहिदीन और जेकेएलएफ, और आपस में एक दूसरे भाई को मार रहे थे, और मारने के बाद ये ऐलान करते थे इसके जनाजे में जो जाएगा उसको हम मार देंगे।
अच्छा, फिर तो मसूद अजहर साहब से हमने कहा तो क्या कहा उन्होंने?
फिर उन्होंने एक तकरीर की वहाँ, वो भी क्या कर सकते,
तो जेल में तकरीर करने की इजाज़त थी?
जी हाँ, जेल तो हम लोगों ने, वो जेल थोड़ी थी, तो हमारा घर था, उसको तो हमने सबको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया था।
अच्छा, जब जेल में आप थे तो वाज होता था और आपको लिटरेचर भी फराहम किए जाते थे?
जी हाँ, लिटरेचर आता था, लिटरेचर तो वहाँ दुनिया भर का था,
इस्लामिक लिटरेचर,
इस्लामिक लिटरेचर तो दुनिया भर का था।
उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों ने जेकेएलएफ को कुछ कन्वर्ट किया अपने इसमें, अपने कॉज
में? नहीं नहीं नहीं, ये दोनों बहुत कट्टर थे, ये दोनों अपने मकासद में बड़े कट्टर थे।
वहाँ अजहर साहब से मिलते रहे काफ़ी?
अजहर साहब 3 नंबर वार्ड में एक ही साथ रहते थे जनाब।
फिर वो गए 31 दिसंबर को उनको रिहा किया गया उस उमर के साथ।
जी हाँ,
और कौन थे उसमें?
मुश्ताक जरगर, मुश्ताक लटरम नाम जिसका, अलुमर कमांडर का चीफ थी।
तो बहरहाल जेल में आपने बताया कि वहाँ आपको पछतावा होने लगा कि गलत।
जी हाँ जी हाँ, वहाँ मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी,
कुरान भी पढ़ा आपने बताया?
जी हाँ, कुरान भी पढ़ा मैंने
पहली बार जेल में।
जेल में और पढ़ाने वाला भी मौलाना अजहर मसूद।
वही कुरान पढ़ के आपने, आपको पछतावा, वही सीरत पढ़ के पछतावा, लेकिन अजहर मसूद को क्यों नहीं पछतावा हुआ?
अजहर मसूद को इसलिए पछतावा नहीं हुआ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, वो अभी उसी दौर को ढूंढ रहा है। किस दौर को? दौरे नबूवत को ढूंढ रहा है वो अभी भी, वो अभी भी उन्हीं सहाबा को ढूंढ रहा है,
लेकिन खुलफाए राशिदीन के ज़माने।
हाँ, वो सहाबा अभी नहीं है, वो सहाबा अभी नहीं है।
उनका जो टारगेट है वो हिंदुस्तान क्यों होता है?
अगर हम गलत है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी गलत है।
उनका टारगेट इंडिया क्यों रहता है?
क्या जवाब दूं मैं आपको, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। गुजरात ले लीजिए,
उस वक्त तो गुजरात हुआ भी नहीं था ना।
नहीं तो नहीं हुआ तो था ना, हुआ तो था ना। कुनन पोशपोरा ले लीजिए, आपकी आर्मी ने हमारे 100 औरतों की इज्जत लूटी, दिल्ली में एक रेप हुआ पूरा हिंदुस्तान जला दिया गया। हिंदुस्तान टारगेट इसलिए बनता है।
तो जुबैर अहमद बात कर रहे थे सैफुल्ला खान से। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। छत्तीसगढ़ में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने राज्य के माओवाद प्रभावित इलाके बस्तर के सुकमा जिले में फायरिंग का अभ्यास किया है, जिस पर मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुताबिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दावेदार रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को विदेश नीति या दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने सोमालिया में चरमपंथी संगठन अल शबाब के 3 सदस्यों को ले जा रहे वाहन पर ड्रोन से हमला किया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने कहा है कि वो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश मानेंगे, जिसमें उनसे अपना घर बनाने में इस्तेमाल हुआ सार्वजनिक पैसा वापस करने को कहा गया है। पाकिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि पिछले साल देश में 1100 से ज़्यादा महिलाओं की उनके रिश्तेदारों ने इज्जत के नाम पर हत्या की। भारत में एक मशहूर टीवी सीरियल बालिका वधू में अहम किरदार निभाने वाली कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी की अचानक मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।